ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा चरण लागू। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर की अन्य राज्य सरकारों को भी ग्रैप 4 प्रतिबंध लागू करने के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कैलाश गहलोत ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारत मंडपम में चल रहे सरस आजीविका मेले में 300 से अधिक लखपति दीदियां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी और राष्ट्रीय युवा महोत्सव अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप का चौथा चरण आज सवेरे 8 बजे से लागू कर दिया गया। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ग्रेप चरण 4 के अंतर्गत कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। इस बीच आज शाम 7 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 495 दर्ज किया गया। एक रिपोर्ट।
ग्रैप 4 के लागू होने पर राजधानी में ट्रक लोडर समेत अन्य भारी वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान सभी प्रकार के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BS6 डीजल वाहनों के प्रवेश को दिल्ली में आने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले BS4 वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के सभी दफ्तरों में क्रमबद्ध समय लागू करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। वहीं दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक कार्य करेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों को तत्काल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप 4 प्रतिबंध लागू करने के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 से कम होने पर भी ये प्रतिबंध लागू रहेंगे। इसके अलावा न्यायालय ने दिल्ली और पड़ोसी राज्य सरकारों को स्कूलों में 12वीं तक की कक्षाएं भी तुरंत बंद करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर प्रतिबंध लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई। न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए हलफनामा दायर करने को कहा है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सभी नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें, यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है। इस मामले को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए पीठ ने कहा कि संबंधित राज्य सरकारों को गंभीर वायु गुणवत्ता सूचकांक को कम करने के लिए हर संभव कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति गंभीर होने को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज सभी संबंधित विभागों को ग्रैप 4 दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही है। श्री राय ने उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार से आपातकालीन कदम उठाने की मांग की।
दिल्ली के अंदर आज अभी हमने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है कि ग्रैप 4 के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। इस तरह से लोगों की जान को, लोगों की सांसों को खतरे में डाल करके, आप मौन व्रत धारण करके, आप बच करके भाग नहीं सकते। इसलिए मैं ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इस पर पहल करे और जो जो इमरजेंसी मेजर्स हो सकते हैं उनको उठाया जाए, जिससे पूरे उत्तर भारत को इस प्रदूषण की मार से बचाया जा सके।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदूषण की रोकथाम नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण स्थिति डरावनी और चिंताजनक है।
दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या का सामना है। लोग मुसीबत में हैं, स्कूल बंद हो गए हैं, घर में बैठ करके भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, एयर प्यूरिफायर भी फेल हो गए हैं। ये हालात हैं दिल्ली, आज दिल्ली से लोग पलायन कर रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर में गिरते वायु गुणवत्ता सूचकांक के चलते हरियाणा के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने गुरुग्राम में कल से स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाओं को अस्थायी रूप से स्थगित करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज द्वारका क्षेत्र में लगाए गए एंटी स्मॉग सिस्टम का निरीक्षण किया। श्री सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिजली के खंभों पर लगाए गए एंटी स्मॉग सिस्टम को लगभग 20% प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बढ़ते प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राजधानी में बढ़ते प्रदूषण की समस्या का समाधान करने की बजाय राजनीति कर रही है। आतिशी ने कहा कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी शासित राज्य पंजाब में गिरावट दर्ज की गई है।
पंजाब की सरकार ने ये दिखा दिया है कि अगर सरकार चाहे तो पराली जलाने की घटनाएं कम हो सकती हैं। तो हरियाणा में क्यों नहीं कम हो रही है, उत्तर प्रदेश में क्यों बढ़ रही है, राजस्थान में क्यों बढ़ रही है, मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ रही है, देश के पूरे नॉर्थ इंडिया के तकरीबन हर शहर में आज वेरी पुअर या सीवियर पोल्यूशन लेवल पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, देश भर में अगर पराली जल रही है उस समस्या का समाधान करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए कृषि भवन के बाहर जनता को मास्क वितरित किए। इस अवसर पर श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 वर्ष से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की उदासीनता ने राजधानी को प्रदूषण के संकट में धकेल दिया है।
दिल्ली में जो हालत है वो बस से बदतर है, लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है, लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा, आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कैलाश गहलोत ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भाजपा मुख्यालय में श्री गहलोत को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सदस्यता दिलाई। इस दौरान दिल्ली भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कैलाश गहलोत ने बताया कि वो भाजपा में अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं और इसके लिए उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हुए हैं।
राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में, राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इसके अलावा राज्य की 8 विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 23 नवंबर को होगी। प्रचार के अंतिम दिन आज राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने जनसभाएं और रोड शो की और जनता से वोट देने की अपील की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव वाली सभी 9 विधानसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की हैं। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है। आज केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह ने मुजफ्फरनगर के कई गांवों में रोड शो किया। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीरापुर के जौली गांव में जनसभा को संबोधित किया। प्रदेश की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें कुंदरकी, करहल, कटहरी और सीसामऊ सीट सपा के पास रही है, वहीं गाजियाबाद, खैर और फूलपुर की सीट भाजपा के पास रही है, जबकि रालोद ने मीरापुर और निषाद पार्टी ने मझवा सीट पर जीत हासिल की थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
पंजाब राज्य महिला आयोग ने कथित तौर पर महिलाओं और कुछ समुदायों के खिलाफ कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। श्री चन्नी ने मुक्तसर के गिद्दड़बाहा विधानसभा क्षेत्र में एक रैली में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इस सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। कला, संस्कृति और विरासत का अद्भुत संगम सरस आजीविका मेला दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंतर्गत आयोजित इस मेले में आगंतुकों को हस्तशिल्प, वास्तुकला और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस मेले में देश भर से 300 से अधिक लखपति दीदियां भी अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी।
सरस आजीविका मेला नवाचार का एक उत्सव है। भारत मंडपम में आयोजित इस मेले में दीनदयाल अंत्योदय योजना पहल के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई है। 450 से अधिक लखपति दीदियों की उद्यमशीलता देखने का अवसर मिलेगा। इस मेले के जरिए लखपति दीदियां समाज में पारंपरिक शिल्प को संपन्न व्यवसायों में बदल रही हैं। मेले में छत्तीसगढ़ की बस्तर कला, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल, पश्चिम बंगाल की काथा साड़ी, आंध्र प्रदेश की गुंडूर मिर्ची और गोवा के गोवन काजू आगंतुक खरीद सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इस महीने की 19 तारीख से 27 नवंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव को विकसित भारत युवा नेता संवाद का नाम दिया गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। डॉ मांडविया ने कहा कि इस मंच से देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने और उनके समक्ष अपना दृष्टिकोण रखने का अवसर उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें देश में 1,00,000 ऐसे यूथ लीडर डेवलप करना है जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। ऐसे यूथ को विकसित भारत में भी हमें जोड़ना है और लीडर भी बनाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन दिया। ये विकसित भारत के विजन में युवाओं का क्या सुझाव, युवा अपना कंट्रीब्यूशन कैसे अदा करें, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना मीन्स विकसित भारत यूथ लीडर डायलॉग है।
डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य देश की युवाओं में प्रतिभा की पहचान कर उन्हें विकसित करना है। हाल में शुरू किए गए आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के लिए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 10,00,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। इस कार्ड से वृद्ध नागरिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर को लॉन्च किए जाने के 3 सप्ताह के भीतर हासिल की गई है। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के तहत अब तक 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4,800 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ हुआ है, जिनमें 1,400 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। इस कार्ड के तहत कई गंभीर बीमारियों में इलाज की सुविधा मिलती है। इस वर्ष सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMJAY के एक महत्वपूर्ण विस्तार को मंजूरी दी थी, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इस कदम का उद्देश्य 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाना है। योजना के लाभों तक पहुंचने के लिए ABPMJAY के तहत एक नया और अलग कार्ड प्राप्त होगा। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता और संयुक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक पेंशन मौली सेन गुप्ता इसमें भाग लेंगे। श्रोता, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के महत्व, पात्रता और अन्य तकनीकी पहलुओं के संबंध में हमारे विशेषज्ञों से टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक के बेहद गंभीर स्तर पर पहुंचने पर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप का चौथा चरण लागू। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली NCR की अन्य राज्य सरकारों को भी ग्रेप 4 प्रतिबंध लागू करने के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कैलाश गहलोत ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भारत मंडपम में चल रहे सरस आजीविका मेले में 300 से अधिक लखपति दीदियां अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी और राष्ट्रीय युवा महोत्सव अगले वर्ष 11 और 12 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।